जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन पल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन पल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन पल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा पावन छारी
यमुना
यमुना तेरा मन चारी
यमुना तेरा
मन जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय
विष्णुपाद परमहंस प्रजगचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरापुरी धाम की जय द्वारकापुरी धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौरताई की जय श्री श्री राधा राधिकरमन भगवान की जय कृष्ण बलराम की जय पंच तत्व की जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गुरांग ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण सभी लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानुताश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी नमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। इसमें से लगभग ज्यादा लोग अजन्माय प्रभु जी की भक्तृषा से लग रहे हैं, लीडर्स लोग अब्सेंट ज्यादा हैं। उद्देश्य था कि हम लोग कार्यक्रम को इस प्रकार करें कि जिसमें अधिकतर सीनियर डिब्यूटीज हों, तो उनकी अटेंडेंस पूरी हो नहीं पा रही है किसी तरह से। शायद तो सर्दी का कारण भी हो सकता है, आजकल सर्दी ज़्यादा है तो इसलिए नहीं आ पा रहे। फिर उम्र का भी है, लोगों की उम्र बढ़ रही है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए, जिस डिवोशनल सर्विस को हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का, इसकी जो स्टेज है, कई स्टेजेस के द्वारा इस भक्ति को परफॉर्म किया जाता है। हमारे जीवन में हम लोग जो हैं अभी, जैसे हम लोग बताए, तीन प्रकार की जो भक्ति है, जिसमें साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, हम लोग किस चीज़ का पालन कर रहे हैं अभी? साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो साधना भक्ति के अंगों में हम लोगों को साधु संग और उसके बाद श्रद्धा से शुरू होता है, अधोश्रद्धा तथा साधु संग। तो जब हम लोग अपने अपने पूर्व जन्म की सुकृतियाँ और पुण्य के आधार पर और तामसिक राजसिक और सात्विक श्रद्धा के अनुसार हम लोग जो हैं जन्म लेते हैं, तो पूर्व जन्म की स्वीकृति और पूर्व जन्म के इन संस्कारों के बेसिस पर हम लोग, हमारा स्वतः कुछ आकर्षण होता है भक्ति के प्रति, और फिर उसी के माध्यम से हम लोगों को साधु संग भी प्राप्त होता है। लेकिन साधु संघ प्राप्त होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साधु संघ केवल जो व्यक्ति इतना एडवांस कर चुका उसको अचानक प्राप्त होगा। नहीं, साधु संघ की कृपा किसी पे भी और कभी भी हो सकती है। प्रभुपाद जी भगवान के एक विशेष दूत थे, शुद्ध भक्तों में एक, लेकिन उन्होंने विदेश में जाके मलेच्छों और यावनों के ऊपर कृपा करी अपना संग देने के माध्यम से। और जब वो भक्त कुछ पढ़ने लगे, सीखने लगे, समझने लगे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सच में हमारी भी कुछ सुकृतियां थी, ये पुण्य कर्म थे जिसके बेस पे हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, आप सब लोगों की स्वीकृतियां मैंने दी हैं, मैंने प्रदान की। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास हर वो शक्ति होती है जिस प्रकार की भगवान के पास भी होती है, लेकिन वो लोग अपनी उस शक्ति का क्या लोगों को क्या कहते हैं उसे दिखावा नहीं करते। जो भक्ति योगी है ये टॉप मोस्ट है। भगवान भगवद गीता के 6 अध्याय में कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा। योगियों में वो योगी जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, मेरा भावना भावित है और सभी कुछ उसका मन मुझ में ही लगा हुआ है, अपने हृदय में केवल मेरा ही ध्यान करता है, तो दूसरे प्रकार के सभी प्रकार के योगी हैं वो टॉप मोस्ट है। तो जो योगी जन हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब भगवद गीता में लिखा है कि कई लोग जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो वो लोग कई प्रकार के प्रलोभनों से आकर्षित हो जाते हैं, वेदों की ऋचाओं से और वेदों में लिखे कई प्रकार के मार्ग जो एक पर्टिकुलर कोई रिचुअल पूरा करने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो लोग अपने अपने श्रद्धा पुण्य कर्म के हिसाब से किसी ना किसी चीज में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार योगी जन भी ऐसे नहीं कि अचानक योग करना शुरू कर दिया उन्होंने, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, इंद्रियों को रोकते हैं, उसके बाद वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग की इन विधियों का मतलब इन स्टेजेस का पालन करना शुरू करते हैं, इन 8 स्टेजेस का। तो इन्हीं समाधि इसी योग को करते हुए कुछ समय के बाद योगियों को अष्ट सिद्धि भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और उनका कईयों का योग जैसे भगवान बता रहे हैं कि मत गते अंतरात्मना योगी नम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में मुझे वो ज्यादा पसंद है जो मत परायण, जो मुझे परायण, जो मुझे पूरी तरह सरेंडर कर चुका है हृदय में, जो मुझे देखने का प्रयास करता है और सारे कर्म जो मुझे केंद्रित करता है, तो ही इज द टॉप मोस्ट योगी। लेकिन जिस प्रकार भक्ति में जब व्यक्ति शुरुआत में भक्ति की चाह से, भक्ति की इच्छा से, फिलॉसफी से कन्विंस्ड होकर भगवान के रूप से, भगवान के श्रृंगार से, भगवान की सुंदर सुंदर कलाओं से, उनकी योग्यताओं से आकर्षित होता है, उनके कीर्तन से, उनके प्रसाद से, तो शुरू में व्यक्ति जानकर पढ़कर श्रवण इत्यादि कर भगवान से आकर्षित होता है, उसका मन होता है कि हाँ हमें कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो धाम जहां पर कि भगवान रहते हैं। धन्वंतरी श्लोक कौन सा बोलते हैं, वही 16 शब्दों का मंत्र बोलते हैं, धन्वंतरी तद अक्षरम मंत्र। फिर क्या है, नाम षोडशकान्वितम, जिसमें कि 32 अक्षर हैं और 16 शब्द हैं। और वो कौन सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, प्रजपेन वैष्णवो नित्यम। वैष्णव लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं नित्यम रोज, जो विष्णु कृष्ण भक्त हैं। क्या होता है इसका फिर रिजल्ट, राधा कृष्ण स्थलम लभेत, गोलोक वृंदावन जहां की श्री श्री राधा और कृष्ण विराजमान हैं आध्यात्मिक जगत में, उनकी अंतरंग लीलाओं को उस धाम को प्राप्त करता है, स्थलम लभेत, ये 16 शब्दों के मंत्र का जप करने से। शुरुआत में जिस प्रकार योगी जन योग की, कई लोग योग की जो अणिमा लघिमा कामवशायिता इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करने के लिए लोग योगी भ्रमित हो जाते हैं. एक एक सिद्धि अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है, जब वो योग करते हैं तो उनको इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है. जैसे एक इंसिडेंट सुनते हैं हम लोग कि एक बार प्रभुपाद जी के भी शिष्यों ने कहा कि एक व्यक्ति आया है जो कि पानी पर चल कर, सुना है कि पानी पर चल कर दिखाता है. तो प्रभुपाद जी ने पूछा उस व्यक्ति से कि आपने कितना समय लगाया सिद्धि को प्राप्त करने में. उसने बोला 15 साल लगाए मैंने. तो प्रभुपाद जी ने वही अपने सारे शिष्यों के साथ और कुछ अठाने पता नहीं कितने पैसे देकर बोट से उस नदी को पार कर लिया. रूपा जी का कहना था कि इस व्यक्ति ने 15 साल अपने जीवन के खराब कर दिए पानी में चलने के लिए, एक नदी पार करने के लिए खाली, और वही हमको चंद पैसे देकर इधर से उधर चले गए. जबकि वही समय व्यक्ति अपने को पूर्णतः कृष्ण भावना भावित करने में लगा सकता था, जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्कर से हमेशा बाहर निकल सकता था. तो योगी जन भी आकर्षित हो जाते हैं इन प्रकार की सिद्धियों से. उसी प्रकार जब वेदों में अलग अलग ऋचाओं को और अनुष्ठानों को करते हैं तो स्वर्ग लोक की जो वहां का ऐश्वर्य है उससे आकर्षित हो जाते हैं. इसलिए कई बार हमारे यहां पर स्वर्ग के ऑपुलेंस की चर्चा नहीं करते जाते. आज ज्यादातर भारत के लोग अमेरिका सेटल होना चाहते हैं. क्या कारण है? क्लीन सिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स हैं, पैसे हैं, जो करना करता है व्यक्ति. तो व्यक्ति वहां से आकर्षित होकर वहां जाना चाहता है, वहां एंजॉय करना चाहता है. ये तो एक ही देश की बात कर रहे हैं जो भारत में, मतलब भारत के बाहर है, लंदन जाना, यूरोप जाना चाहता है व्यक्ति. इन जगहों पर सेंस एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहता है. तो स्वर्ग लोग भी जो है वहां पर लोग जब सुनते हैं वहां का ऐश्वर्य क्या है तो वहां से आकर्षित हो जाते हैं. तो इसलिए कई बार ये लोग हम देखते हैं जब किसी का देहांत भी होता है तो एक कार्ड आता है रसम पगड़ी का हमारे पास, उसमें क्या लिखा होता है? तो ये स्वर्गवासी हो गए. ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है. वो भी इसलिए लिखा उन्होंने कि ऐसा नहीं कि सच में गया है वो देखकर आए हैं, ऐसा नहीं. स्वर्गवासी हो गए इसलिए लिखना पड़ता है कि कम से कम ये पोस्ट तो दिलवाई दें. अब ये थोड़ी कि नर्कवासी हो गए ना, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे. अब व्यक्ति ने कैसे कर्म किए, क्या उसके अंदर इच्छाएं थी, जुआरी वो, शराबी वो, कबाबी वो, है ना, हर तरह के उसने बुरे काम किए, लेकिन मरने के बाद एक डेजिग्नेशन उसके आगे लिखा गया स्वर्गीय, ये श्रीमान जी वहां गए. तो ऐसे कोई कंफर्मेशन भी नहीं आई, ऊपर से कोई लेटर आया जी हाँ ही इज अपॉइंटेड कि स्वर्ग में आ गए व्यक्ति, बट लिखना पड़ता है. तो लोग ज्यादातर स्वर्ग के विषय में जानते हैं और उन्हीं प्रलोभनों से जुड़े रहते हैं और नाना प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि भी करते हैं और वहां जाने का प्रयास करते हैं. उसी तरह से भक्ति में लोग आते हैं तो भक्ति में आके बाद भी भक्ति में ठीक हरे कृष्ण भक्ति में व्यक्ति को नाना प्रकार के प्रलोभन, एक तो हृदय में उसकी जो इच्छाएं हैं. श्री जगन्नाथ सुभद्रा महाराज की जय, श्री गणनाथ जी की जय. जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं या फिर अपने यहां भी कुछ ना कुछ प्रकट होता है. जैसे क्रीपर्स बोलते हैं ना, अनवांटेड ट्रीज उगते हैं पानी डालते ही, इस तरह की चीजें उगने लगती हैं. और फिर जो असली उद्देश्य था उस उद्देश्य को भूलकर उसी में फंस जाता है. तो जिस डिवोशनल सर्विस की हम बात कर रहे हैं जो अधोश्रद्धा से शुरू हो रही है, तो अधोश्रद्धा उस श्रद्धा को जिस कोमल श्रद्धा कहा जाता है, पूर्व जन्म की सुकृतियां पुण्य और तीन प्रकार की तामसिक राजसिक और सात्विक श्रद्धा व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी होती है कर्मों के हिसाब से. जब वो जन्म लेता है दूसरा तो भगवत कृपा से, क्योंकि हमने बताया कि ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किसी व्यक्ति को कि वो उसमें गया, मतलब इसने रजोगुनी उसकी श्रद्धा थी वो अचानक रजोगुनी ही रहेगा या वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता. भगवत कृपा था. जिस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने मलेच्छों या यावनों को, या अब वो ऐसे नहीं है, परम वैष्णव बन गए सब लोग, अपने संघ के द्वारा उनको ऊपर उठाया, उसी तरह जब भक्तों की कृपा होती है या फिर पूरे जन की सुकृतियां होती हैं तो उसके द्वारा व्यक्ति भक्तों के संग में आ जाता है। और फिर भक्तों के संग में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है व्यक्ति को, कि भक्तों के संग में आने से जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, और जो कि अपनी आदतों से व्यक्ति मजबूर है, भक्तों के संग में आने से उसकी आदतें, उसकी इच्छाएं या उसके जो सो कॉल्ड टेम्पररी उद्देश्य बनाए थे जो उसने, वो भी चेंज हो जाते हैं। ये शक्ति केवल भक्तों के अंदर है जो बदल सकती है, भक्तों के संग में। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने और भागवतम में प्रहलाद महाराज इत्यादि वैष्णवों ने सदैव भगवान से भक्तों के संग की याचना की, क्योंकि भक्ति का जन्म भक्तों के संग में ही होता है। और जब व्यक्ति भक्तों के संग में आता है, इस एसोसिएशन में आके, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, तो जब व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तो वही उसके आचार विचार योजनाएं और उसका भविष्य बनाता है। इसलिए जब भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है, राय रामानंद जो कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत प्रोमिनेंट पार्षद रहे हैं, जिनको कि बताया जाता है कि विशाखा सखी के वो इनकार्नेशन थे, अर्जुन के भी बताए जाते हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले, सरू दामोदर जी ने कहा था कि आप उनसे मिलना जाके, राय रामानंद बहुत रसिक भक्त हैं। राय रामानंद जी गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत राजा टाइप के व्यक्ति थे, वजीर टाइप, इस तरह के उनके एक पोस्ट था बहुत ऊंचा। और गंगा किनारे जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो मिलते ही एक दूसरे को देखते ही जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, गले मिले और रोने लगे और भाव के सारे लक्षण प्रकट करने लगे। उनके बीच में फिर बाद में चर्चा शुरू हुई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे कहा गया कि मैं आपसे कुछ रस की तत्व की बातें सुनूं या सीखूं, तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया। और अगर उस टॉपिक की अगर हम चर्चा करें तो हमें पता चलेगा कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं अभी, उसके हिसाब से अगर देखें जो रस तत्व उसमें चर्चा हुआ है, तो हमारी भी शुरुआत ही है। उन्होंने बात शुरू करी ही है तो जिसमें कि चतुर्वर्णमय सिस्टम, जिस तरह चार वर्णों आश्रम में रहकर व्यक्ति जो अपने कर्मों को त्याग कर कर भगवत भक्ति करना शुरू करता है, वहां से शुरू हुई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऐसा करने की कि ऐसे हो जाए हम। और ये करते करते, क्योंकि फिर उन्होंने सर्वधर्माणि परित्यज्यम, फिर उससे और आगे चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल मना कर दिया, अहो भाई ये तो बाहर की चीजें, कुछ अंदर की बात बताओ और इम्पोर्टेंट, इससे और गूढ़ क्या है। फिर धीरे 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 आगे गए, फिर कुछ चीज ठीक लगी उनको, कहते और बताओ। फिर उन्होंने जो है गोपियों के भाव को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो इस प्रकार प्रोसेस में हमारे भी की गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली हमको वो सब चीज बता दी कि भाई आप तो बिगनर्स ही रहो, नहीं, इसी बिगनिंग से ही हम लोग उस एंड तक पहुंच सकते हैं, उस गोपी भाव तक पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद जी जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी ने बोला कि प्रभुपाद वो कह रहे थे कि ये रासलीला के समान है। प्रभुपाद ने यस इट इज, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कृष्ण से किसी को मिला देना, ये जितनी ट्रांसेंडेंटल सर्विसेज हैं, इन सब सेवाओं से अगर हम तुलना करें आध्यात्मिक जगत की सेवाओं की, तो कंपेयर अगर करें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब लोगों का भाव है कृष्ण को प्रसन्न करना, भौतिक जगत में जब हम लोग डिवोशनल सर्विसेज शुरू करते हैं तो हमारा भी उद्देश्य क्या होना चाहिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता हर क्रिया में हर काम में। तो क्या अंतर है आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत में, अगर हम लोग अपने मन वाणी और कर्म से गुरु की प्रसन्नता और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं यहां पर, तो कृष्ण को हमने फेस टू फेस नहीं देखा है, लेकिन कृष्ण की जो कृपा की मूर्ति है वो गुरु है। हुँ? वो गुरु हैं। तो जब उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम लोग अपने मन वाणी और कर्म को लगा देते हैं, तो यहां पर अपनी इंद्रियों को लगाने से, अपने मन को लगाने से, अपनी बुद्धि को लगाने से ये सेवा भी उस सेवा के स्तर की बन जाती है, आध्यात्मिक जगत के स्तर की। वो बात अलग है कि हम लोग अभी आगे पीछे रहते हैं क्योंकि एज में हैं, तटस्था शक्ति हैं, तो ज्यादातर कई बार माया के प्रभाव में रहते हैं, कभी कभार जागते हैं तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं फिर इधर आ जाते हैं। और एक बहुत सुंदर बात, इस भौतिक जगत के दुख समस्याएं, कोई व्यक्ति अगर बाहर खड़ा समुद्र के तो देख सकता है लहरें कैसे आ रही हैं, लेकिन बचा हुआ उन लहरों से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लहरों के अंदर है, भौतिक जगत में पूरी तरह मन वाणी और कर्म उसने अपने इंद्रिय सुख के लिए, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रखा है, तो उसमें आने वाली लहरें, उसको हर लहर की चपेट पड़ेगी, ठीक है, हर लहर को उसको सहना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुख क्या है जो भौतिक जगत में ही है, मतलब समुद्र के अंदर खड़ा है और सारी लहरें उसको, उसकी आसक्तियां, उसकी जो क्रिया कर्म जो कर रहा है वो, उसमें होने वाली समस्याएं वो सब आ रही लहरों के समान। तो सुख क्या है उस व्यक्ति के लिए, मतलब एक आधी लहर कम हो गई टाइम के अकॉर्डिंग, या दो चार लहरें नहीं आई, या आई तो एक हल्की आई, तो उस व्यक्ति के लिए सुख वो है। और जो बाहर खड़ा है, जो कि समझ लीजिए आध्यात्मिक जगत में है या पूर्णतः मुक्त व्यक्ति है, उसके लिए लहरें क्या है, कुछ भी नहीं, दूर से देख रहा है कि हाँ इस तरह का भौतिक जगत है, इसमें जिन व्यक्तियों ने अपने आप को बहुत ज्यादा एंटेंगल कर लिया इन सब चीजों में, तो उनके लिए हर लहर जो है एक कठिनाई है, एक समस्या है। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं लहरों से दूर होने का, है अभी पानी में, यहां तक पानी है, आप गए थे ना सब लोग जगन्नाथपुरी लेकिन लहरें उनको तंग नहीं कर रही, क्योंकि लहर आती है और पैरों पर लगकर वापस ले जाती है, इतनी दूर सेफ है, जो है पानी में ही। तो ये कौन सी, ये प्रोग्रेसिव डिवोटीज जो देख रहे हैं कि हाँ पहले हम भी लहरों में होते थे तो क्या सोचा, तो कई बार कई लोग लहरों में जाकर आ जाए, और लहरें आ जाए नहीं वो तो वो समुद्र तो जो है वो आध्यात्मिक है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी इसमें स्नान किए हैं, चैतन्य महापुर ने स्नान किए हैं, तो तीर्थ है वो, उसमें तो डुबकियां मार सकते हैं। लेकिन हम जो एग्जांपल देने प्रयास कर रहे हैं उसको समझिए कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में यहां के कष्टों से नहीं घबरा रहा, थोड़ी और टेंशन ले ली, थोड़ा यहां पर भी थोड़ा सा कर लू, थोड़ा सा और, समझ रहे एंटेंगलमेंट बढ़ रहा है जिसका, और उसको जैसे हम होंगे कामया, हम होंगे कामया एक दिन, इस प्रकार के देशभक्ति के गानों से पूरे तरह और है व्यक्ति, और छोटी मोटी लहरें से कुछ नहीं कर सकती, खड़ा है वो, कितनी अजीब बात है। उसको वो कष्ट अब कष्ट नहीं लग रहे हैं, वो जो लहरें आ रही हैं वो सह रहा है उसको, लेकिन ऐसा सहने का फायदा क्या, अगर कुछ लहरें सह ली, कुछ कष्ट सह लिए इस प्रकार के, उसे बड़ी लहर उसको गिरा देती है, वो उसके लिए कष्ट है। तो इस प्रकार कुछ लहरें अगर नहा भी आई या कुछ लहरों को सह भी लिया तो उसका कोई फायदा थोड़ी है तो समुद्र के अंदर ही ना है, तो कष्टों में ही है, तो भौतिक जगत में ही। और जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं वो ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर कि लहरें अपना बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखा पाती, डिवोशनल सर्विसेज के संग में आकर, भक्तों के संग में आकर, हरिनाम के शरण में आकर व्यक्ति ने उनके प्रभाव को कम कर लिया, अपने आप को उस मटेरियलिज्म से थोड़ा और दूर कर लिया, प्रयास है कि मैं पूरी तरह उस भव सागर से बाहर निकल जाऊं। इस एग्जाम्पल को इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग समझ सकें कि भव सागर जो है जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु, ये जो बार बार जो जन्म इत्यादि का हमको कष्ट हो रहे हैं, ये तभी तो बोलते हैं कि भव सागर से पार करना। तो ये जो भव सागर है जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु का, इससे कोई व्यक्ति पार नहीं हो पा रहा है, इसी के लहरों के थपेड़ों में वो रोज जो है परेशान हो रहा है, और कुछ कम आ जाती है तो खुश हो जाता है, ज्यादा आती है तो दुखी होता है, लेकिन है कहां? भव सागर के अंदर। जब तक वो भक्तों के संग में आकर ये नहीं समझेगा कि मैं कहां फंसा हुआ हूं, मैं कहां, मुझे कहां से निकलकर कहां जाना है, ये ज्ञान देंगे भक्त लोग। और इसलिए जो भक्तों का संग बताया गया शास्त्रों में उसको बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। इन्हीं संग की वजह से ही व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, जन्म दर जन्म उसको आना पड़ता है, और यही भक्तों का संग जो है उसको इस जन्म बुढ़ापे बीमारी मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकाल सकता है। सो इजी भगवत भक्ति संघर्ष श्लोक में बताया है कि हमारी जो अटैच, जैसे एक मन एव ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षया, कि व्यक्ति का मन जो है वही कारण है उसके इस संसार में रहने का, और यही कारण बनता है इसके बाहर निकलने का। संगात विषय संगो, अटैचमेंट होने की वजह से वो विषय में संग में फंस जाता है, और अगर उससे अलग हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। तो जो हमारा मन जिस प्रकार हमारा कारण बनता है इस भौतिक जगत में बने रहने के लिए, उसी प्रकार यही मन जब सही जगह लग जाता है, जब मित्रत्व व्यवहार करता है, तो ये हमारी मुक्ति का कारण बनता है। सेम श्लोक, मतलब मीनिंग थोड़ा सेम है, कि यही भक्तों के संग के लिए इस्तेमाल किया गया, कि जब कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तो वो उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है, जब अभक्तों के संग में रहता है तो उसके बंधन का कारण बन जाता है। तो व्यक्ति को संग लेते समय बहुत ही सोच विचार करना चाहिए। हम लोग इस समाज में रहकर कुछ समय तक सोशलाइजिंग करते हुए खुश रह सकते हैं, कुछ लोग हमें इस प्रकार के मिल सकते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हों, हमें हमारे को ग्लोरीफाई करते हों, एक अलग से सुख महसूस कर सकते हैं इस संसार में, अपने बिजनेस को लेकर, अपने क्वालिफिकेशन को लेकर, अपने वातावरण, अपने परिवार संबंधियों को लेकर कुछ समय तक खुश रह सकते हैं हम लोग, कुछ समय के लिए। लेकिन ये कंफर्टेबल जोन हमारे लिए वास्तव में क्या है? बहुत घातक है। एक स्वामी हैं हमारे, मैंने देखा तो था पर मैं कंफर्म नहीं कर पाया, किसी ने मुझे बताया कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो एक स्टोन जैसे कोई चीज कमर पर या पीछे रख लेते हैं। उसका कारण क्या है? कि वो चुभता रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे, मतलब पीछे ना, मतलब ताकि उनको हमेशा याद रहे कि भौतिक संसार यहां कंफर्टेबल जोन के अंदर रहने के लिए नहीं है। जब हम लोग यहां पर कंफर्टेबल फील करते हैं, जब हम सुखी फील करते हैं यहां पर, तो ये और वर्स सिचुएशन है। ये हमारे सुख में जो चार चांद लग रहे हैं यहां पर, ये हमारी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये हमारा आने वाले जन्म के बंधन बढ़ा रहे हैं। क्षमा करना लेकिन रियलिटी यही है। दो भक्त थे राजा टाइप के, उन लोगों के अंदर इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि दोनों ने अपना राजपाट छोड़ दिया, भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े। और कोई चलते चलते एक दिन एक जगह स्नान के लिए उतरे, रुके, अपने वस्त्र जो है उन्होंने टांग दिए, वस्त्र मिलते जुलते थे, स्नान करके जब बाहर आए लड़ पड़े वो, ये मेरा है, ये तेरा है, वो मेरा है, ये मेरा था, लड़ पड़े वो लोग आपस में। और उसी समय एक वृद्धा स्त्री वहां आई, उसने कहा, अरे एक कोपिन एक शॉल के लिए लड़ रहे हो तुम लोग, तुम्हें मालूम है तुम किस जगह पे हो? कहते किस जगह पे? कहते यहां पर हर जगह हमारे राजा और दूसरे पड़ोस के एक राजा दोनों का बहुत मान सम्मान है यहां पर, इतने बड़े त्यागी वैरागी हुए कि अपना राजपाट छोड़ दिया और तुम लोग एक छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे हो। वो दोनों हुई थी मतलब कहने का क्या मतलब है कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे, एक कोपी ने अंगिर बहिर्वास के लिए, और भूल गए थे कुछ समय के बाद कि हां जाना कहां है, करना क्या था, क्यों त्यागा था, सब भूल चुके थे। इस प्रकार भक्ति में देखिए हो सकता है इस तरह के इंसिडेंट्स में कभी भी किसी के साथ भी हो जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है क्या कि एक अलार्म सिचुएशन, अलार्मिक सिचुएशन होनी चाहिए जब व्यक्ति को हमेशा जागना पड़े, जब कोई उसको समझाए जगाए। भक्तों का संग इसलिए जरूरी होता है और खासकर अपने साथ वाले संग का जो कि इक्वल्स है, जिनके साथ मित्रता हो, जो हमें बता सकें, जिनको हम लोग अपने हृदय खोल सकें। जब कोई कोई हमें पकड़ के बोल सके प्रभु जी कहाँ जा रहे हो आजकल, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, या कोई व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा हो प्रभु जी आपका तो बोलना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको प्लीज़ कम करो, प्रभु जी आज आजकल ये फिर एक और फैक्ट्री लगा रहे हो, क्या चक्कर है, सब ठीक तो है, गुरु जी ने कहा क्या, समथिंग लाइक। तो कोई व्यक्ति रुके, कुछ पूछ सके, कुछ बता सके, सो दैट कि व्यक्ति को मालूम हो मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहां मुझे जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। नहीं तो क्या होगा, भक्ति जैसी गतिविधियां चलती रहेंगी अंत तक, और होगा क्या एक दिन कि उसी सिचुएशन में चला भी जाएगा व्यक्ति। लेकिन जो हृदय की भक्ति, क्योंकि हृदय का मामला है, एक्सटर्नल दास लगने से या स्वामी या गोस्वामी लगने से काम नहीं चलता। गोस्वामी का मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर रखा है। तो इस प्रकार ये हृदय का जो है मामला है। हम लोगों ने कितनी उन्नति की 20 साल 30 साल का जो भी हमें प्रोसेस मिला, अंत तक का जो भी हम इतने साल होंगे हम सबको मिलेंगे 10-20 साल ये सब मिले भक्ति करने के लिए, उसमें टाइमिंग हम जानते हैं कितना हमारे पास है। अगर इसका ठीक ठीक से सदुपयोग नहीं किया और हमेशा जागरूक नहीं रहे, और कितना अजीब बात है, मान लो कि गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, और बात बात में भौतिक आकर्षणों से कभी लेफ्ट टर्न कभी राइट टर्न, कभी लेफ्ट टर्न कभी राइट टर्न, अपने मार्ग से उतर जाता है, बार बार डिस्टेंस बढ़ गया, लेफ्ट या राइट लेने से अलग टेंशन, जाम, रेड लाइट्स बहुत मिल गई, और फिर जब याद आया कि जा कहाँ रहा हूं, इससे बड़ी तो राइट वही था, तो फिर किसी टर्न बताया कि चलो फिर मेन रोड पर आ गए, फिर मेन रोड पर सीधा चलना है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं रुझान दिखा, कोई मेला लगा हुआ है, कहीं कुछ है, कोई सर्कस लगा हुआ है, कोई पिज्जा हट है अंदर जाके, कोई व्यक्ति ऐसे कर रहा है आज इधर आ जाओ, तो वहां जाके रोक लिया। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी इस प्रकार के बड़े सारे प्रलोभन आएंगे, लेकिन अगर हम लोग हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में जानते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। भक्ति के समय, भक्ति को करते हुए हमारे जो बाहरी आवरण है, जो एक्सटर्नल एडवांसमेंट के साइन है, वो मैटर नहीं करते। इसलिए लास्ट टाइम भी हमने एक बार बताया था कि जो कंफर्टेबल जोन में रहकर हमें आदत पड़ी है ना भक्ति की, ये भी ठीक हो, यहां से इतना आता रहे, ऐसा और हो जाए, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें, थोड़ा ये भी चलता रहे, फिर भक्ति भी चलती रहे, तो उस चीज को, उससे भी हमें डरना चाहिए, चेक करवाना चाहिए क्या कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, गुरुदेव से पूछना चाहिए जाके कि मेरी ये स्थिति है। तो इस प्रकार हम लोग अगर इस तरह की सुंदर मिली हुई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, इसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे, साधु संघ का ठीक प्रकार से जो है लाभ नहीं उठाएंगे, तो एक लाइफ जो हमें मिला है ये दो लाइफ भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर हम देखिए, मुश्किल नहीं है, केवल सरल भक्त बनने का प्रयास करना, सरलता, सिंप्लिसिटी, क्योंकि बताया जाता है कि हम लोग अगर देखिए ज्यादातर ये भक्ति सरल लोगों की काम है। सरल का मतलब होता है जो अंदर वो बाहर। अब अंदर बाहर का मतलब थोड़ा और समझना पड़ेगा कि किस तरह अंदर बाहर। मन में किसी के प्रति निंदा आ रही तो बोल दी, है ना, बड़ा नहीं देखा छोटा नहीं देखा, वैष्णव एटिकेट पालन नहीं किया, मुंह में गाली आई बोल दी, ऐसे नहीं। सरलता का मतलब जो व्यक्ति जिसके अंदर ये सद्गुण आ चुके हैं, जिसे वैष्णव सदाचार, जो व्यक्ति भक्ति के नियमों का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर तपस्या, वैराग्य, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस जैसे गुण बढ़ गए हैं, और जो ऑनेस्ट है, मतलब सिंप्लिसिटी का मतलब, उसके अलमारी आप जब मर्जी खोल लो, देयर इज नथिंग टू हाइड। बड़ा मुश्किल है आजकल तो, लेकिन फिर भी ओपन डायरी टाइप, जिसको कभी डर नहीं लगता किसी भी सिचुएशन से, क्योंकि कुछ गलत करता ही नहीं। जो व्यक्ति कुछ गलत करता है, कुछ छुपाता है, कहीं झूठ बोलता है किसी की, जिसने निंदा की हो और अचानक को रिपोर्ट मिले, गुरु जी आपको बुलाया है, बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या कर दिया मैंने, उसके लिए तो नहीं बुलाया, नहीं यार वो तो पता नहीं था किसी को, अच्छा उसके लिए नहीं, वो भी नहीं होगा, फिर किसने बुलाया है, डर रहा व्यक्ति। तो जब व्यक्ति बहुत सरल होते हैं, जब व्यक्ति इन गुणों से पूरी तरह से, ऑनेस्टी जैसे गुणों से पूरी तरह भरे होते हैं, तो उन लोगों को डर नहीं होता। उन्हें डर होता है केवल एक चीज का, कि मैं कभी भक्तों के संग से दूर ना जाऊं। जो चैतन्य महाप्रभु राय रामन के हम बात कर रहे थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने सारी कन्वर्सेशन के बाद में पूछा कि अच्छा बताओ इस जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लॉस क्या है, सबसे बड़ी हानि क्या है। तब राय रामन ने बोला कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लॉस है भक्त के लिए भक्तों के संग से दूर हो जाना, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि भक्ति व्यक्ति भक्तों के संग में कर सकता है। हमारी स्थिति वैसी नहीं है जैसे योगियों की, 300 400 साल से किसी गुफा में बैठे हैं या वहां चले जाएं कुछ कर लें, नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी के समय पर भी कई लोगों ने हरिदास ठाकुर बनने का प्रयास किया। प्रभुपाद प्रभुपाद यस ही स्टार्टेड 64 राउंड्स, ओके प्रभुपाद नाउ ही स्टार्टेड 192। अब वो पेड़ पे जाके करता है प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कहा वो बंदर बन चुका है, वो कुछ दिन के बाद दिखेगा और फिर नहीं दिखेगा, और हुआ ऐसे गायब हो गया, छोड़ छाड़ दिया उसने, दो दिन पांच दिन का ड्रामा था खत्म। नहीं कर सकता अकेला व्यक्ति, नहीं कर सकता किसी आचार्य को ऐसे फॉलो बिना किसी गुरु इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी उसके। तो भक्तों का संग जो है इतना महत्व रखता है, और हमारे सारे के सारे शास्त्र भरे हुए हैं भक्तों के संग के ग्लोरिफिकेशन से, कि कैसे कैसे भक्तों का संग, कैसे कैसे ऐसे दुष्टों को भी मिला तो वो भी क्या हो गए, पवित्र हो गए। रूपा जी की लाइफ से देख सकते हैं, मृगारी जैसे व्यक्ति को हम देख सकते हैं, कि आज पढ़ा वही मृगारी ने जो पूछा अपने परिवार से, जब वो सारे जानवरों को काटकर अधमरा छोड़ देता था, नारद जी ने कहा कि ये क्यों करते, उसने कहा मैं अपने परिवार को पालने के लिए करता हूं। नारद जी ने कहा तुम पूछ के अपने परिवार से, क्या वो तुम्हारा पाप लेंगे इसका, मना कर दे घर वालों को भी, हम क्यों ले, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, तुम कर रहे हो, हम क्यों करें। कहते मना कर दिया जी, और भागवतम के तीसरे स्कंद में देहूती माता को समझा रहे हैं कपिल महाराज, कपिल मुनि कहते हैं कि इतना, उसको बड़ा साफ साफ शब्द में बोला है कि ये सब सब इल्यूजन है एक्चुअली, ये संसार ये सब माया है, टेम्परेरी तो ही है, ऊपर से जो दिख रहा है ये ऐसा है ही नहीं, कुछ समय के बाद होगा ही नहीं, आप भी नहीं होंगे, सिचुएशंस भी नहीं होंगी, कोई ना कोई नया एंटर करता जाएगा, पीछे का जा व्यक्ति जाता रहेगा। तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो हमारे आसपास दिख रही है सब इल्यूजरी है, स्वप्न की भांति। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या करता है, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे पति हैं। इस प्रकार इन सब चीजों से इतना बंध जाता है, अब क्षमा करना ये आज ही पढ़ा मैंने, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति सोच नहीं पाता उसके बाद आगे। और फिर उसमें लिखा है कि अपने द्वारा कमाए जाने वाले धन का बहुत ही कम परसेंटेज वो उपभोग कर पाता है और बाकी समय और बढ़ाने के चक्कर में, जो लालच बढ़ जाता है उसको संभालने के चक्कर में इन सब चीजों में लगा देता है। एक भौतिक दावेदी व्यक्ति इस तरह का होता है, इस प्रकार वो अपना जीवन खत्म कर देता है उस इल्यूजरी फैमिली को मेंटेन करने में। लेकिन यहां भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं है, यहां सब लोग भक्त हैं, सब लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करी है, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर सब वैष्णव हैं, पिता माता बहन भाई बच्चे सब, तो इन वैष्णवों का पूरा आदर। नहीं तो क्या होगा, पता चलो उस व्यक्ति से भी ज्यादा वर्स सिचुएशन हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने बताया ना अपराध हमारे को हमारे अपने घर में होते हैं, बाहर आके तो हम लोग एक दूसरे को बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन कई बार घर में उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए बड़ा ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए जब हम लोग अपने परिवारों में डील कर रहे हैं, तो उस समय, क्योंकि सब वैष्णव है अब, और हमें चाहिए कि हम पूरी तरह जो है पूरी जिम्मेवारी उठाएं इस चीज की, क्योंकि पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् माता न, बताया भागवतम में कि बनने माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं हमको अगर हम लोग अपने आश्रितों को भगवत धाम नहीं ले जा सकते, अर्थात जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकते। पूरी की पूरी फैमिली का जो संरक्षक है उसका ये दायित्व है कि मैं अपने सब आश्रितों को भक्ति की ओर लगाऊं, मेरा फर्ज है। और इसी प्रकार दूसरे लोगों का भी फर्ज बनता है अपने माता पिता के प्रति। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए जब परिवार में डील करते हैं। वैष्णव के समाज में आके हम लोग फिर भी प्रयास करते हैं प्रणाम का, ठीक प्रकार से बातचीत करने का, आधा एक घंटा मिलते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि जो वो जिस प्रकार वो बाहर डील कर रहा है उसी प्रकार वो अपने परिवार में भी डील करे लोगों से। हो सकता है कि लेट आए, हम तो पहले बहुत मजाक करते थे, हम जानते हैं इनको ये कैसे हैं वो कैसे हूं, नहीं फिर भी अब वैष्णव तरीके से पुकारें, एक दूसरे की सेवा करें और इस प्रकार अपने इंद्रियों को काबू में करते हुए भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। तो अगर हम लोग वैष्णवों के संघ की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे, जैसे 3 दिन लेक्चर हमने इसीलिए करवाने की कोशिश की थी, उसमें कुछ पहलू उन्होंने टच किए थे, अगर हम वैष्णवों के संघ की इंपॉर्टेंस को जान गए तो फिर वैष्णव के संघ को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे कभी भी, और वैष्णव संघ ही हमें भगवत धाम ले जा सकता बहुत आसानी से, और वैष्णव संघ में अपराधों की वजह से ही हम लोग दूसरे धाम भी जा सकते हैं, जाते ही भगवान कहते हैं कि वैष्णव अपराधी जो है वो हो सकता है कि यमराज की कैटेगरी में ना आए, बट वो मेरी कैटेगरी में, उसको मैं पर्सनली पनिशमेंट देता हूं ऐसे लोग, बहुत सचेत रहना चाहिए। मानसिक शारीरिक प्रकार की बाधाएं बढ़ जाती हैं, प्रारब्ध के कारण हो सकता है व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी हो लेकिन मानसिक और कुछ समय के बाद शारीरिक सब तंग करेंगे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, या प्रेजेंट में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच के कारण, तो हमें चाहिए बड़ा सतर्क रहे, ठीक है। तो हम सबों को चाहिए कि वैष्णव संघ को जो है ठीक प्रकार से करें, पूर्व जन्म की सुकृति और श्रद्धा के अनुसार और गुरु की विशेष कृष्ण की कृपा के आधार पर हमको वैष्णव संघ मिलता है, इसका पूरा लाभ उठाए। हरे कृष्ण। प्रश्न है तो पूछे।
डिवोटी एसोसिएशन एग्जैक्टली क्या है? सीनियर्स के केस में तो हम समझ सकते हैं कि उनसे हम नॉलेज लें, सीखें, बट जूनियर्स सॉरी इक्वल्स एंड जूनियर्स के केस में किसी के लिए भी डिवोटी एसोसिएशन की
भक्तों का संघ का मतलब होता है कि हम लोगों को ज्यादातर तीन तरह के भक्तों से डील करना होता है। एक वो भक्त जो हमसे सीनियर है वो हमेशा मिलेंगे, तो सीनियरिटी भी कई तरह से होती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उम्र में सीनियर है, कुछ लोग होंगे दीक्षा में सीनियर होंगे, कुछ लोग होंगे ज्ञान में वृद्ध होंगे, ज्ञान बहुत होगा तो कई बार ये कैटेगरी ऊपर नीचे भी हो सकती है। ज्ञान में वृद्ध 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, कई बार देखा ना आपने, इतने इतने लोग बोल जाते हमारे मंदिर में 3 साल की लड़की पूरी ब्रह्म संहिता सुनाती थी, गोपी गीत सब याद था उसको, 2.5 साल से ही सुनो शुक्र से। तो कई बार हम लोग शारीरिक रूप से ना देखें, क्योंकि आत्म जैसे ये बात अक्रूर प्रभु जी ने भी बोली थी, शायद घर पे बोली थी कहीं, सेकंड लेक्चर बोला कि हम तो केवल देहिक दृष्टि से देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, ये उसके बाल सफेद हो गए, ये व्यक्ति विवाहित है, इसने इस साल में दीक्षा ली थी, लेकिन आत्मा की कोई उम्र थोड़ी है, वो तो पूरा तरह दिव्य है। और वो जब शरीर बदलता है तो पिछले शरीर का कोई लेना देना नहीं होता उसको, तो उसी प्रकार एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भक्ति का, तो जहां पर भी जन्म लेता है उसकी भक्ति वहां से शुरू होती है। तो देखने में तो हमें चाहिए कि सारे के सारे लोग क्या है हमसे सीनियर है, डीलिंग्स के समय हमें रेस्पेक्ट ऐसे रखनी चाहिए। कुछ हो सकता है कि अरे इसको तो मैंने जोड़ा, मैं इसको सीनियर कैसे मानूं, लेकिन रेस्पेक्ट डिवोटी के लिए हमेशा हर एक व्यक्ति के प्रति हमारे होनी चाहिए। आचरण के समय ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे जो पशु योनियों में भी हैं वो आज नहीं तो कल मनुष्य योनि में आएंगे, कल को भक्त बनेंगे, बने सबने बनना है, ये प्रोसेस इस तरह का चला। तो 3 प्रकार के डिवोटीज में मिलने में, एक सीनियर डिवोटीज, तो एक्सटर्नली देखने पर वो लोग जो कि स्वामी जन हैं, एक सन्यासी हैं, उनका हमें पूरा वो करना चाहिए आदर सत्कार। वैष्णव वरिष्ठ भक्तों को एज ए पोस्ट भी हमें उनको, हो सकता है कई बार हमसे जूनियर व्यक्ति, हमसे कम उम्र का व्यक्ति, उसको कोई दायित्व मिल गया तो वो हमसे सीनियर है, हमें पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस रूप में भी होता है, तो जितने भी और जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारे सीनियर हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, दीक्षा में हमसे पहले हैं, ब्राह्मण दीक्षित इत्यादि हैं, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। दूसरा इक्वल्स वो लोग हैं जिनके साथ हम लोग साथ में आए, दीक्षा साथ में हुई, उम्र भी बराबर है, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं, इक्वल्स हैं, तो इनके साथ हमारा मित्रता पूर्वक व्यवहार रहना चाहिए। अब मित्रता का मतलब शुरू में तो होगा क्या कि मित्र का मतलब है कि मेरे कुछ गुण या मेरी कुछ फीलिंग्स इसकी भी है वैसी है, सेम एक के प्रति हैं, तो इसलिए दोस्त हैं, या हम दोनों को एक चीज बड़ी अच्छी है खाने के बाद हलवा बड़ा अच्छा लगता है तो दोनों इसलिए दोस्त हैं क्योंकि रोज वहीं पर मिलते सेम उसी टाइम पर, वो नहीं। इक्वल्स का मतलब क्या कि इक्वल्स में रहते हुए मच्छित मदगत प्राण होना, अर्थात भगवान की चर्चा होनी, भगवान के विषयों में चर्चा करनी, आपने क्या पढ़ा मैंने क्या पढ़ा, इस पर भगवत चर्चा, नो प्रजल्पा, ज्यादातर प्रजल्पा शुरू हो जाता है। प्रजल्पा का मतलब वो चीजें शुरू हो जाती हैं जिसमें दोनों का इंटरेस्ट है या किसी एक का इंटरेस्ट है, वो बातें शुरू हो जाती हैं जो कि मटीरियल टॉक है। तो हो सकता है शुरुआत में हम लोग ना रोक पाए, लेकिन प्रयास करना चाहिए इसको रोकने का, आधार भक्त स्पिरिचुअल टॉपिक रहने चाहिए। तो आपस में मित्रता व्यवहार रहना चाहिए इक्वल्स के साथ। जूनियर्स के प्रति हमारी रिस्पेक्ट रहनी पूरी चाहिए, लेकिन दया का भाव रहना चाहिए, अर्थात कि मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूं इसको स्पिरिचुअली एडवांस कराने में, कहीं पर उसको कुछ प्रॉब्लम है कुछ है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूं। एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, ओ इधर कब आया, 2 दिन हुए भी आए, ये पकड़ ग्लास पानी लेकर, अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है रैगिंग नहीं है, अच्छा ये तो अभी नया सा नया फर्स्ट ईयर में है तो मैं थर्ड हो गया, ऐसा नहीं। एक्सप्लॉयटेशन नहीं, क्या उसकी मदद कैसे करनी कि कि कैसे इसको बोलूं बेटा, माला कैसे कर रहे हो, अच्छा इस प्रकार करते हो, तुम्हें मालूम नहीं मोड़ना होता इस तरह, नहीं प्रभु जी मुझे नहीं पता था, क्रॉस नहीं करना चाहिए, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, कब कब करते हो, अच्छा इस टाइम पर कर लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार किसी की मदद कर सकते हैं। तो वैष्णव के संग में, और इसी में घर में हमारे बच्चे भी आते हैं इसी में, उनकी भी हमने मदद करनी है, उनको भी हेल्प करना है कि वो भी भक्ति में एडवांस करें। तो हर जगह मिलेगी तीन कैटेगरी, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में जूनियर्स पर नीचे के लोगों को एडवांस कराने का हेल्प करना, मतलब दया करनी उन पर, और इक्वल्स के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखना, गले भी लगाना उनको मित्रता में, गले हृदय लगने से, और नृत्य अधिक करना, जब कभी कीर्तन हो कुछ हो तो इससे व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से जो है इंजॉय कर सकता है स्पिरिचुअल लाइफ को मित्र में, मित्रता में। और फिर जो सीनियर्स हैं उनका प्रॉपर रेस्पेक्ट, पूरा क्या कहते हैं उसे डेकोरम मेंटेन करना, क्योंकि कई बार भक्तों के इतने भी नजदीक आ जाते हैं कि प्रजल्पा शुरू करके उनके कमियां देखकर, उनकी कुछ ना कुछ देखकर ऐसे तो उससे भी प्राप्त हो जाते हैं, और कई बार इतना दूर चले जाते हैं कि फ्रीज ही हो जाते हैं, कई दिन से आए नहीं, क्या हो गया, अपने कहा था थोड़ा दूर रहा करो, दूर ही हो, ठंडे हो गए। तो उचित दूरी मेंटेन कर वैष्णव सदाचार का हर साथ हर एक व्यक्ति साथ पालन कर पूरा प्रयास। शुरू में हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो जाएगा।